इशिका ईशानी के घर पहुंच चुकी थी। उसके लिए वो जगह और लोग अनजान थे, इसलिए इशिका अंदर जाने के बजाय बाहर ही खड़ी थी। अंदर ईशानी की सास उसकी बेटी रूही को भला बुरा कह रही थी, यहां तक कि उसके साथ में बुरा बर्ताव भी कर रही थी। इशिका खोई हुई निगाहों से उन्हें देख रही थी, क्योंकि न जाने क्यों उसे रूही से अपनापन महसूस हो रहा था। इशिका दरवाजे पर खड़ी थी, तभी अचानक किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। इसी के साथ इशिका जल्दी से कुछ कदम पीछे हो गई। उसने पलटकर देखा तो वहां लगभग 28 साल का एक आदमी खड़ा हुआ था। वो दिखने में हैंडसम था, जिसके गोरे चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी थी। इससे पहले कि वो इशिका को कुछ कह पाता, रूही ने उस आदमी को देखा और वो दौड़ते हुए बाहर आ गई। रूही उसके पैरों के लिपटते हुए बोली, डैडी, मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा चाहिए, रूही को दादी मार रही थी। रूही को गोद में उठाने के बजाय ईशानी का पति उससे कुछ कदम दूर हो गया। उसने इशिका को घूरते हुए देखा और कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पीछे से देखा तो एक पल के लिए लगा ईशानी यहाँ खड़ी है, लेकिन तुम तो कोई और ही हो। मैं ईशानी की क्लासमेट हूँ, इशिका ने जवाब में कहा। फिर उसने एक नज़र रूही की तरफ देखा, वो अपनी माँ के लिए रो रही थी। इशिका ने उसके पति की तरफ देखकर कहा, मेरा नाम इशिका सिंघानिया है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। बहुत टाइम बाद ईशानी से मिलना हो रहा है, वो कहाँ है? क्या आप उसे बुला देंगे? वो मर गई है। अब तुम्हारे सवाल जवाब हो गए हैं, तो निकलो यहाँ से, ईशानी के पति ने काफी बेरुखी से जवाब दिया, जिसे सुनकर एक पल के लिए इशिका भी चौंक गई थी। कोई अपनी पत्नी से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता था, जबकि उनकी तो लव मैरिज हुई थी। इशिका वहां खड़ी सोच रही थी, तभी ईशानी की सास बाहर आई और अपने बेटे से बोली, तरुण बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? इस छोटी चूहिया ने मेरे नाक में दम कर रखा है, पिछले 3 दिन से ठीक से कुछ खा पी नहीं रही है। अगर बीमार हो गई तो इसके इलाज में बेवजह पैसे खर्च होंगे। ईशानी के पति का नाम तरुण था। उसने आईज रोल करके कहा, माँ आप देख लो, मुझसे बच्चे नहीं संभलते हैं। वो काफी इरिटेट हो रहा था। तरुण अंदर जाने को हुआ, तभी रूही उसके पीछे आने लगी। ईशानी की सास माया ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया इससे पहले कि रूही पर और सख्ती दिखाती, इशिका ने जल्दी से कहा, आंटी अगर आप बुरा न मानो तो मैं इसे खाना खिलाकर देखती हूँ। माया ने एक नज़र ईशानी की तरफ घूर कर देखा, फिर हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है तुम देख लेना, अंदर आ जाओ। इशिका ने प्यार से रूही को गोद में उठा लिया था, वो उसे लेकर अंदर आ रही थी। माया आगे बड़बड़ाती हुई चल रही थी। उसने इशिका से पूछा, क्या तुम्हें कोई खबर है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ गई होगी? वो पिछले 3 दिन से गायब है और उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। हमारी फिक्र तो उसे पहले से ही नहीं थी, लेकिन अपनी बच्ची को भी हमारे सिर पर छोड़ गई है। अरे अगर कहीं जाना ही था तो इस मुसीबत को भी अपने साथ लेकर जाती। उन लोगों का बर्ताव देखकर इशिका को इतना अंदाजा तो हो गया था कि ईशानी की जिंदगी वहां आसान नहीं थी। उसने बिना कुछ कहे रूही को काउच पर बैठाया और फिर खाने का बोल अपने हाथ में ले लिया था। इशिका ने प्यार से रूही को कहा, बेटा आप खाना खा लो, आपकी मम्मा कुछ दिनों में आ जाएगी, वो किसी जरूरी काम से गई है। रूही बहुत जल्दी इशिका की बात मान गई थी और खाना खाने लगी थी। ये सब देखकर माया काफी इम्प्रेस हुई। उसने इशिका से कहा, अच्छा सुनो लड़की, जब तक तुम्हारी वो दोस्त वापस नहीं आ जाती तब तक उसकी बेटी का ख्याल तुम ही रखो, तुम चाहो तो इसे अपने साथ भी लेकर जा सकती हो। इशिका को ईशानी के बारे में पता लगाने के लिए उन लोगों से ज्यादा बातचीत करनी जरूरी थी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं रुक जाती हूँ। तरुण भी वहीं पर मौजूद था, बस वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसे इशिका के वहां रुकने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आखिर उसकी माँ और उसे रूही से छुटकारा जो मिल रहा था। तरुण का ध्यान अचानक मोबाइल से हटकर इशिका की तरफ गया, वो उसे काफी गौर से देख रहा था। तरुण ने अपने मन में कहा, ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है? ईशानी की सभी दोस्तों को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये उसकी दोस्त नहीं हो सकती है। पीछे से ये लड़की बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी और इसकी स्माइल भी ईशानी की तरह है, नाक भी मिल रहा है, क्या किसी दोस्त का दूसरे दोस्त से चेहरा मिल सकता है? जरूर ये लड़की किसी ना किसी तरीके से उससे जुड़ी हुई है, मुझे इसे यहाँ कुछ भी करके रोकना ही होगा। तरुण ने मोबाइल साइड में रखा और इशिका से कहा, मैं और ईशानी यहाँ थोड़े दिनों पहले ही आए थे, तो यहाँ उसे कोई ठीक से नहीं जानता है, वो बाहर भी नहीं निकलती थी। कोई तुमसे तुम्हारे बारे में पूछे तो तुम उन्हें यही कहना कि तुम रूही की माँ हो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ आसपास के लोग तुम्हें मेरे साथ देखकर बात बनाएं। इसके लिए मुझे रूही की माँ बनने की जरूरत नहीं है, मैं उसका ऐसे ही ध्यान रख लूंगी, इशिका ने सख्ती से कहा। तुम्हें जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जरूरत है, यहाँ के लोग काफी नैरो माइंडेड हैं, वो काफी दिनों से ईशानी से मिलना भी चाहते थे। कौन सा मैं तुम्हें सच में मेरी पत्नी बनने का बोल रहा हूँ, सिर्फ नाटक ही तो करना है, जब तक ईशानी वापस नहीं आ जाती तब तक की बात है, अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो चली जाओ यहाँ से, तरुण ने काफी रूडली कहा। इशिका को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इशिका ने उसकी बात पर हामी भर दी थी। रूही को खिलाने के बाद इशिका ने उसे गोद में उठाया। माया ने एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा, वो ईशानी का कमरा है, तुम रूही के साथ रह सकती हो। इशिका ने आगे कुछ नहीं कहा और रूही को लेकर अंदर चली गई। कमरे के अंदर ईशानी और रूही की कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। जिस तरह इशिका यहाँ मेकअप के जरिए अपना चेहरा छुपा कर आई थी, उसी तरह ईशानी जब जब इशिका से मिली थी तब उसने भी खुद के चेहरे को छुपाने की कोशिश की थी। इशिका ने ईशानी की तस्वीर को गौर से देखा तो पाया कि उसकी स्माइल और नोज इशिका से मिलती है, जिसे देखकर वो भी हैरान हुई थी। अगर ईशानी मुझे सबसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी तो उसे मुझसे सच छुपाने की क्या जरूरत थी? उसने तो अपना नाम भी सही नहीं बताया था। क्या हम दोनों एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस वजह से हमारी शक्ल एक जैसी है? ऊपर से उसका सरनेम भी मर्चेंट था, इशिका ने अपने मन में कहा। फिर उसकी नज़र रूही के ऊपर गई, जो मासूमियत से उसे देख रही थी। अचानक रूही इशिका के करीब खिसकी और उसे गले लगाकर कहा, आंटी मेरी माँ वापस कब आएगी? रूही उन्हें मिस करती है। बेटा जल्द ही वो वापस आ जाएगी, तब तक आप मुझे अपनी मम्मा समझ लीजिए, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा और फिर रूही का सिर अपने गोद में रखकर उसके बालों को सहलाने लगी। अचानक इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, जब मैं उस जगह पर कैद थी तब वो लड़का मुझे इसी तरह सुलाता था। क्या उसे वो लेटर मिल गया होगा? लेकिन क्या फायदा, अगर वो राजवंश विला पहुंचा भी होगा तो उसे यही पता चला होगा कि मैं मर गई हूँ। इशिका अपने ख्यालों में गुम थी, तभी उसने देखा रूही को नींद आ चुकी थी। इशिका भी वहां लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। इन सब में इशिका भूल गई थी कि उसे वापस क्रूज पर पहुंचना था, जहां उसके न आने पर सांची परेशान हो रही थी। अगली सुबह इशिका की आंख खुली तो माया उसके कमरे में खड़ी थी। वो उसे घूरते हुए बोली, तुम भी बिल्कुल अपनी दोस्त की तरह हो, वो भी किसी काम की नहीं थी। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ रह रही हो तो फ्री में रहने को नहीं मिलेगा, काम भी करना पड़ेगा।
माया के इस तरह चिल्लाने पर रूही की नींद भी टूट चुकी थी। वो उठते ही इशिका के चिपक गई थी। इशिका ने उसे गोद में लिया और बाथरूम की तरफ चली गई। तैयार होने के बाद इशिका ने ईशानी के कपड़े पहने थे। उसने जानबूझकर ऐसी ड्रेस सिलेक्ट की थी जिससे उसकी पूरी बॉडी हाइड हो सके। इशिका जब रूही के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची तो तरुण ने इशिका से कहा, आज मैं माँ के साथ बाहर जाने वाला हूँ, पीछे से तुम रूही का ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी माँ की तरह इसे अकेले छोड़कर भाग जाओ। तरुण इशिका को इस तरह ऑर्डर दे रहा था जैसे वो उसकी कोई नौकरानी हो। वहीं बाहर जाने की बात सुनकर माया ने तरुण से पूछा, कहाँ जाने का सोच रहे हो तुम, और तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूल गया था माँ, तरुण ने अपने बालों में हाथ घुमाकर कहा। आपने वो न्यूज़ नहीं देखी क्या? वो टॉप बिजनेसमैन अभिमन्यु राजवंश, उसकी पत्नी की मौत हो गई है, कल उसका अंतिम संस्कार है और आज अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके घर में आने वाले हैं। घर नहीं महल बोलो माँ, वहाँ बहुत अमीर और बड़े लोग आएंगे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी जान पहचान बढ़ाने का। इशिका समझ गई थी कि वो किसी और के नहीं उसी की बात कर रहा है। ऐसे तो इशिका अपने घर नहीं जा सकती थी, लेकिन ये अच्छा मौका था जब वो तरुण के साथ अपनी माँ को देखने जा सकती थी। इशिका ने जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है, तरुण ने मना कर दिया। तुमने कहा ना कि यहाँ आसपास के लोग मुझे तुम्हारी पत्नी समझेंगे, तो अगर मैं घर पर रही तो उन्हें शक हो जाएगा। सोचो अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर भाग गई है तो वो तुम्हें ही गलत समझेंगे, उन्हें लगेगा कि तुम इस शादी में खुश नहीं कर पा रहे थे, इशिका ने बढ़ा चढ़ाकर कहा ताकि तरुण हाँ कह दे। कुछ सोचने के बाद तरुण ने कहा, ठीक है तुम चल सकती हो, लेकिन वहाँ किसी से बात मत करना, वो लोग बहुत अमीर हैं, कहीं तुमने किसी को कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया और उन्हें बुरा लगा तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगी, इशिका ने जवाब दिया। वहाँ जाने के लिए माया अंदर तैयार होने के लिए चली गई थी। वहीं इशिका रूही के साथ थी। उसे रूही की मासूम शक्ल देखकर बहुत दया आ रही थी। इशिका ने अपने मन में कहा, कोई और ईशानी के अंतिम दर्शन करना डिजर्व करे या ना करे, लेकिन रूही को एक आखिरी बार अपनी माँ को देखने का पूरा हक है। इसी बहाने मैं माँ से मिलकर उन्हें बता पाऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरे जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही होंगी, कहीं फिर से उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। इशिका अंदर रूही के साथ थी। इस बीच माया तैयार होकर बाहर आई। उसने तरुण से कहा, इस लड़की को साथ लेकर जाने की क्या जरूरत है, वो छोटी बच्ची हमें परेशान करेगी, इतने लोगों के बीच हम ठीक से बात भी नहीं कर पाएंगे। माँ मैंने उसे साथ आने के लिए इसलिए हाँ कही है ताकि कोई पूछे तो हम कह सकें कि ये लड़की मिसेज राजवंश की क्लासमेट थी, तरुण ने जवाब दिया। लेकिन ये लड़की देखने में मुझे कोई अमीर घर की नहीं लगती है, वो मिसेज राजवंश की क्लासमेट कैसे हो सकती है, मैंने तो सुना है वो लोग बहुत अमीर हैं, माया ने पूछा। हाँ लेकिन मिसेज राजवंश कोई बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा, तरुण ने जल्दी से जवाब दिया और फिर इशिका को बाहर आने के लिए आवाज़ लगाई। इशिका के बाहर आते ही तरुण ने कहा, अब जब तुम मेरी पत्नी होने का दिखावा कर ही रही हो तो मैं तुम्हें उसी के नाम से बुलाऊंगा। फिर उसने रूही की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम इसे आंटी नहीं माँ कहोगी, अगर मैंने सबके सामने तुम्हें इसे आंटी कहते हुए सुना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तरुण का बेरहम चेहरा रूही से अनजाना नहीं था, वो घबराकर इशिका की चिपक गई थी। इशिका ने उसे गुस्से में कहा, बच्ची को डराना बंद करो। इशिका ने इतना ही कहा और फिर रूही को गोद में लेकर बाहर आ गई। बाहर तरुण की एक छोटी सी गाड़ी थी जिसमें इशिका और रूही पीछे बैठी हुई थी, जबकि माया आगे तरुण के साथ फ्रंट सीट पर थी। रास्ता थोड़ा लंबा था। रास्ते में रूही को भूख लगी तो वो इशिका से बोली, मम्मा मुझे खाना चाहिए। इशिका कुछ कहती उससे पहले माया ने कहा, एक तो इस छोटी शैतान की भूख खत्म नहीं होती है, वैसे भूख तो मुझे भी लगी हुई है, नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। बड़बड़ाते हुए माया ने अपना बैग खोला जिसमें कुछ पैकेज्ड फूड रखा हुआ था। उसने अपने और तरुण के लिए दो पैकेट निकाल लिए और बाकी दो पैकेट पीछे की तरफ फेंक दिए थे। उसने जो खाना दिया था वो रूही के लायक तो बिल्कुल नहीं था। इशिका ने सख्ती से कहा, आगे किसी सुपरमार्केट के आगे गाड़ी रोक देना, मैं रूही के हिसाब से कुछ ले लूंगी। ये तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है? तुम तो इसकी माँ बनने का दिखावा कर रही थी ना। कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी तक के खाने पीने का तुम्हें ख्याल नहीं है, माया ने मुंह बनाकर कहा। वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे इशिका सच में रूही की माँ हो। अगर इशिका को ईशानी के बारे में सब कुछ जानना नहीं होता तो वो कभी उसकी बातें नहीं सुनती। इशिका चुपचाप बैठी हुई थी। आगे सुपरमार्केट आने पर इशिका ने रूही के खाने लायक खाना खरीदा और चुपचाप राजवंश विला आने का वेट करने लगी। सुबह के लगभग 10 बजे के करीब इशिका राजवंश विला पहुंच चुकी थी। वहां वाकई काफी भारी मात्रा में भीड़ थी। इशिका ने मास्क लगाया और रूही को गोद में लेकर गाड़ी से बाहर निकल गई। इतने लोगों में वो इंसान भी जरूर आया होगा जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। क्या वो इंसान जानता है कि अंदर जो लाश है वो मेरी नहीं बल्कि ईशानी की है, इशिका ने मन ही मन कहा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा लिए थे।